ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी ने राजू भाई की बहुत ही पावरफुल क्लास का लाभ लिया, अनुभवों से भरपूर हुए। बाबा भी कई बार कहता है दुआएं असंभव को संभव कर देती हैं, लिफ्ट का काम करती हैं। तो कैसे वो दुआएं जमा करनी है, बहुत छोटे छोटे सुंदर अनुभवों से भाई जी ने लाभान्वित किया। पर जैसे बाबा कई बार कहता है कि हमारे पास इतने सारे प्रभु रत्न हैं जो इतने सारे अनुभवों से संपन्न हैं, और ऐसे कई प्रभु रत्न, विशेष रत्न आज हमारे बीच में हैं। हम उनसे भी उनके अनुभव सुनेंगे कि वो आत्मा है जो भारत के भिन्न भिन्न देशों में बहुत अच्छी सेवाएं संभाल रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट विंग में भी बहुत एक्टिवली सेवाएं देते हैं। तो वहां की एक बार रूबरू आपको भी उनसे मुलाकात कराएं, उनके दिल के भाव, उनके अनुभव, उनको कैसे बाबा की समय प्रति समय मदद मिली है हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हमारे बीच में सबसे पहले आगरा से अश्विना बहन पहुंचे हैं। मैं अश्विना बहन का मंच पर स्वागत करती हूं। अश्विना बहन हमारे बीच में आएंगे, हम सभी तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं। और मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि जैसे जैसे हमारे बीच में आते जा रहे हैं, तिलक से और फूलों से भी आपका स्वागत करेंगे। अश्विना बहन हमारे बीच में है। साथ साथ हमारे बीच में इंदौर की अनीता बहन पहुंचे हैं। मैं अनीता बहन से भी अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं। इंदौर से अनीता बहन पहुंचे हैं। और सिरसा से बिंदु बहन पहुंचे हैं। बिंदु बहन का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। ये सभी हमारी बहुत विशेष बहनें हैं जो हर वर्ष ट्रांसपोर्ट की सेवाओं में पहुंचती हैं। साथ में हमारे ईवी गिरीश भाई जी और ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के वाइस चेयरपर्सन सुरेश भाई जी भी हैं। मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करती हूं। और बहनें सभी का तिलक से, बुके से और हम सब तालियों से आपका मंच पर स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। गिरीश भाई जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर शुरू करते हैं।
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
हमारे बीच में सुरेश भाई जी भी पहुंचे हैं, डॉक्टर सुरेश जो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। मैंने तिलक और बुके से आपका भी स्वागत करे और हम सभी तालियों से हमारे सुरेश भाई का बहुत बहुत स्वागत करते। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि जब हम बुद्धि से सुनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बुद्धि की आवाज बुद्धि तक पहुंचती है और जो दिल की आवाज है वो दिल तक पहुंचती है और दिलाराम से जुड़ाती है। तो आज हमारा विशेष लक्ष्य है कि हम आपसे सुनेंगे तो वो दिल की आवाज को सुनेंगे, वो दिल की आवाज जो अनेकों को और बाबा के नजदीक लेकर के जाए, इस यात्रा में और उनको मदद दे। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सभी से सुनेंगे और फिर अगर समय रहा तो कुछ प्रश्न उत्तर भी रहेंगे। तो सबसे पहले अश्विना बहन जो हमारे बीच में आगरा से खास पहुंचे हैं, आप आगरा की सेवाएं देखते हैं, लेकिन बहुत ही दिल से प्यार से आप सदा ही इस विंग के सेवाओं में भी जुड़े हुए हैं। आप 7 वर्ष की आयु थी जब ब्रह्म कुमारी से जुड़ गए, 7 ईयर्स, और लगभग 43 ईयर्स से आपने अपना जीवन समर्पित रूप से आप सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसी अनुभवी, बहुत सरल, जिनके चेहरे से ही रूहानियत और नूर दिखाई दे रहा है, आपको देखते हैं तो वो बात याद आ जाती है, जो बाबा कहते हैं रहम और रुहाब का बैलेंस हो वो दिखाई देता है। तो आप थोड़े शब्दों में आपका जो बाबा के साथ का अनुभव है वो सबके साथ शेयर करें।
ओम शांति। बहुत छोटी आयु में, मेरा जन्म भी बॉम्बे का है, पढ़ाई परिवार सब बॉम्बे में है, बहुत छोटी आयु में बाबा के पास आई, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे ज्ञान में आई हूँ, किसने मुझे पहुँचाया वहाँ तक ये भी नहीं पता है। शीलू दीदी जो पांडव भवन में है, आप हमारी पहली टीचर रही और वही मुझे बाबा से मिलने के लिए मधुबन लेकर आई थी। बाबा से और समीप जाने की बात जो मैं कह रही हूँ, थोड़ी सी गहरी बात, मैं छोटी थी और 8 साल की थी जब शायद बाबा के कमरे में ही बाबा से मिलना हुआ था। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया मुझे, बाबा ने मुझे, बहुत छोटी थी तो बाबा ने मुझे मिलते समय यह प्रश्न पूछा कि जानती हो आप कौन हो, तो मैं छोटी थी और मैंने बड़े नशे से कहा हाँ मैं आत्मा हूँ, क्योंकि जो पाठ पढ़ा दिया गया था तो मैंने बड़े उसे कहा हाँ मैं जानती हूँ मैं आत्मा हूँ। बाद में मेडिटेशन हॉल में मैं बाबा से मिली थी तो बाबा ने फिर यह प्रश्न मुझे पूछा कि आप जानती हो कि आप कौन हो। मैं थोड़ी बड़ी थी तो मुझे लगा कि मुझे बाबा से हाँ नहीं कहनी है, तो मैंने ना कही, मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ। तो बाबा एक बच्चों को जैसे बताते हैं, इसी तरह बाबा ने मुझे कहा आप मेरी बहुत अच्छी बच्ची हो बाबा की, ऐसे थोड़ा मुझे याद है। फिर एक बार जब ओम शांति भवन में बाबा से सन्मुख में मिल रही थी तो बाबा ने मुझे फिर यही प्रश्न पूछा, आप जानती हो आप कौन हो। अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, हाँ कहना भी ठीक नहीं लगा और ना कहना भी ठीक नहीं लगा, मैं चुप रही और मैं मुस्कुराई। फिर बाबा ने शुरू किया, बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान, विजय होगी या नहीं होगी ये प्रश्न नहीं उठ सकता, आपकी विजय हुई पड़ी है। फिर बाबा ने वरदान जो है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि बचपन से लेकर आज तक मैं कौन, ये पहेली आज भी मैं सॉल्व कर रही हूँ। हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है मैं कौन हूँ, क्योंकि बाबा जो मुझे कहना चाहते हैं शायद वो मैं उस चीज को अनुभव कर रही हूँ, वही रोल की क्लैरिटी मेरी है या नहीं, ये जीवन में हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। और मुझे लग रहा है कि 7 वर्ष से लेकर आज तक भी हमेशा लगता है कि मैं कौन, जो बाबा कह रहा है मैं कौन। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि ये प्रश्न सदा अपने से पूछते रहूं, मैं कौन।
बहुत सुंदर सार में सुनाया और सार में लेकर के आए। हम दीदी से फिर आगे भी सुनेंगे। हमारे साथ ईवी गिरीश भाई भी हैं, कौन नहीं जानता वो हाथ उठाए। ईवी गिरीश भाई को जो पहली बार है तो सभी ने आपको टीवी पर देखा है, सुना है, और हर एक को पता है कि आपकी जो मुख्य विशेषता है वो रमणीकता है। पर आज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि इस यात्रा में उतार चढ़ाव होता है, आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी विशेषता हमने उसको बनाई होती है कि कई बार हजार बातें भी हैं जिसके लिए हम व्यर्थ सोच सकते हैं, उदास हो सकते हैं, लेकिन तो भी हम चूज करते हैं हल्का रहना, खुश रहना, रमणीक रहना, उस प्रकार की पर्सनालिटी जो हर एक को सहयोग दे। उस पर्सनालिटी को डेवलप करने में आपका विशेष पुरुषार्थ क्या रहता है? और कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जब सच में कोई बड़ी बात थी, अंदर में काफी हलचल भी थी, लेकिन कुछ आपने अपने को याद दिलाया और फिर वही स्माइल चेहरे पर, वही मुस्कुराता चेहरा, आप कैसे करते हैं?
ओम शांति। हंसी से शुरू करता हूं बात। श्रेया बहन ने कहा आप टीवी में रहते हैं ज्यादा। एक बार अभी हम पंजाब हरियाणा में प्रोग्राम कर रहे थे तो मुरली क्लास के लिए जाना था, तो एक माताजी बाहर मिले, बोला भाई जी मैंने आपको टीवी में देखा। तो मैंने कहा मैं अब भी बाहर आया हूँ टीवी से, ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं आप टीवी में ही रहते हैं, ठीक है। हंसी के लिए कह रहा था। जैसे श्रेया बहन ने पूछा, ब्राह्मण जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और मैं समझता हूँ जो सच्चा ब्राह्मण होगा या सच्चा योगी होगा, उसके ब्राह्मण बनने के बाद ही टर्मोइल शुरू होता है, संघर्ष शुरू होता है। मोटे मोटे रूप से तो ब्राह्मण जीवन बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन जितना सूक्ष्मता से हम ज्ञान की बातों को, धारणाओं को जीवन में इनकलकेट करने का प्रयास करते हैं, उतना ज्यादा पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है, उतना ज्यादा हमको अटेंशन रखना पड़ता है, उतना ज्यादा सूक्ष्म चेकिंग करनी पड़ती है। और फिर भी पता चलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी भी कमी है, थोड़ा बहुत अभी भी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। अनुभव के आधार से कहूं तो मैं समझता हूं, टू बी वेरी फ्रैंक श्रेया बहन, मुझे ही नहीं पता कि हम क्या पुरुषार्थ करते हैं। वो इतना बाबा हमसे इतना सहज करवा लेता है। खुश रहना आत्मा का स्वधर्म है, और खुश रहने के लिए मैं क्या करूं, ये मुझ आत्मा को मैं क्वेश्चन करना है। मैं समझता हूं शायद बाबा का वरदान है या बाबा की मदद है या क्या है, मुझे नहीं पता। इजी रहना, मुस्कुराना, विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को हल्का रखना, बहुत सहज मुझे मिला है, और मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कोई बहुत कंसर्टेड एफर्ट, बहुत ध्यान करके उसको करने में मैंने ऐसा कुछ, मुझे नहीं लगता है मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान पे रखा है पुरुषार्थी जीवन में, जो बाबा कहता है उसको बहुत अच्छी रीति से, जैसे इस मास का व्यक्त इशारे भी चल रहे हैं, कितने हम सरल रह सकते हैं। और कुछ प्रेरणाएं मैं बताता हूं, जैसा मैं कह रहा था कि हमने अपना बुद्धि नहीं चलाया किसी चीज में, सब बाबा को पूछा और बाबा ने जैसा कहा वैसे करते चले गए। तो उसमें ना किसी प्रकार का भविष्य की चिंता रही या भविष्य के रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। जैसे बाबा हमको गाइड करके लेके आ रहा है। आपको मैं एक अनुभव सुनाता हूं। जब मैं पहली बार बाबा मिलन के लिए आया था 1998 में, तो बाबा मिलन के साथ में हम पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क का साइट सीइंग करने आते हैं। तो मुझे याद आता है इस गेट से जब मैं आया था तो यहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहा था, और मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों संकल्प किया, और मेरा पहला संकल्प था बाबा मुझे यहाँ खड़े होके सेवा करनी है, और मुझे नहीं पता था क्या सेवा करनी है। कुमार जीवन की सेवा क्या होती है, सुबह मुरली क्लास के पहले कुर्सियां सेट करो, झाड़ू पोछा लगाओ, लाइट करो, माइक स्टैंड में रख के दो। लेकिन मैंने देखा अपने जीवन का अनुभव है, जो जो चाहा है, वैसे कुछ इच्छा नहीं की है, लेकिन वो सब बाबा ने पूर्ण किया है। और उसका शायद एक जो पुरुषार्थ पर मैंने ध्यान दिया हो जाने अनजाने में, कि वर्तमान हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, ये सतयुगी जीवन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान हमें यहां रखना है। वैसे तो बाबा कहता है 21 जन्मों का वर्षा है, लेकिन 21 जन्मों में सतयुग त्रेता का 20 जन्म है। पूरे कल्प का पहला जन्म सतयुग का पहला जन्म, ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए, हमारे जीवन का देखा जाए तो वो सेकेंड जन्म है। पहला जन्म तो संगम युग का है, तो अगर मेरा सेकेंड जन्म सर्वगुण संपन्न होना है तो पहला जन्म तो 125% सर्वगुण संपन्न होना है। अगर सतयुगी पहला जन्म संपूर्ण निर्विकारी 100% होना है तो वो तो सेकेंड है, पहला जन्म तो 150% संपूर्ण निर्विकारी होना चाहिए। तो वर्तमान को थोड़ा ध्यान रखें, सबके साथ बहुत प्यार से, शांति से, दिव्यता से, खुशी से सबको लेट गो करके उस पे थोड़ा सा हमारा ध्यान रहता है, और बाबा ने उसके लिए बहुत मदद की है और बहुत आगे बढ़ाया है। जहां तक कोई समस्या की बात है आगे भी मैं शेयर करूंगा।
पर कभी ऐसा भी हुआ, जैसे कल भी मैं किसी के साथ बात कर रही थी तो कहा कि एक प्रोग्राम था, उसमें उनको मेडिटेशन कमेंट्री कराने की सेवा थी, और कुछ हुआ होगा उससे थोड़ी देर पहले ही किसी ने बहुत जोर की डांटा होगा, तो कहा अभी 2 ही मिनट बाकी था तो अभी समझ में नहीं आ रहा था, रोए कि कमेंट्री कराएं, मार्जिन ही नहीं थी। तो एक समय ऐसा होता है कि आप अंदर में कई बार हलचल भी होती है, आप अभी संपन्न बने नहीं है, परफेक्ट नहीं है, पर बाहर आपको रोल प्ले करना है, स्टेज का भी हो सकता है, कोई और जिम्मेवारी भी हो सकती है, ऐसा कोई मोमेंट कभी रहा है? और उस समय पर अपने को क्या कहें कि हम तुरंत ठीक होकर के वापस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से प्ले कर पाए?
जनरली साइकोलॉजी में भी यही कहा जाता है और बाकी जितने भी प्रकार के मेडिटेशन के टेक्निक्स हैं, सच्चा योगी वही हो सकता है जो अपने आप को क्षणिक डिटैच कर पाए, न्यारा कर पाए, शरीर से न्यारा, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा, बाहर की परिस्थिति से न्यारा। और ये योगाभ्यास जितना हम अच्छा करते हैं, कितना क्विक हम डिटैच हो सकते हैं योग के दौरान, जब परिस्थिति सब अच्छी है, जब किसी ने मुझे डांटा नहीं है या ऐसी कोई बातें नहीं हुई हो, उस समय का जो अभ्यास है क्विक अपने ओरिजिनल स्थिति में आना, जैसे राजू भाई जी भी कह रहे थे, पहला अभ्यास आत्म अभिमानी का, मेरी अपनी स्वस्थिति कैसे है बाहर की परिस्थिति में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी 2 दिन पहले का ही, हम सिक्किम से, गैंगटॉक से वापस ट्रैवल करके आ रहे थे, हमको सॉरी नेपाल से ट्रैवल करके आ रहे थे बागडोगरा, और बीच में शायद 4-5 घंटे पहले एक एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी खाई में नीचे गिर गई, तो उसको रिट्रीव करने के लिए, डेड बॉडी वगैरह को जो करने के लिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया। हमारे साथ एक भाई थे जिनको फ्लाइट पकड़नी थी बागडोगरा से दिल्ली का, और करीब करीब 15-20 किलोमीटर तक लाइन है गाड़ियों का और ओवरटेक नहीं कर सकते। तो हमारे साथ 2-3 भाई थे, तो एक भाई कह रहे थे ओवरटेक कर लेते, हमने कहा रहने दो, वो क्या सोचेंगे। फिर ओवरटेक कर भी लिया, थोड़ा आगे भी चले गए, लेकिन सामने से एक ट्रक आ गई, उसको पीछे करते समय दूसरे गाड़ी में हमारा गाड़ी लग गया। तो वो जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने इतना क्रोध किया, पता नहीं क्या बाबा का वरदान था। हमने कहा आपको जो भी नुकसान है हम देंगे, लेकिन पहले शांत हो जाइए, क्योंकि वो शांति ही हमारा एक वेपन है। अब हम भी गुस्सा कर रहे हैं और गुस्से में तो वो ही जीतेंगे, हम तो नहीं जीत पाएंगे गुस्से में। हमारे पास जो हथियार था, जो हमारे पास शक्ति थी, वो शांति का, उसको बड़े प्यार से कहा। वो इतना गुस्सा कर रहा था, उन्होंने कहा आप आरसी बुक दो। हमने कहा हम आरसी बुक नहीं देंगे क्योंकि आप पुलिस वाले नहीं हो, हम पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। उन्होंने चाबी छीनने का प्रयास किया, हमने कहा हम आपको चाबी भी नहीं देंगे। लेकिन उस वक्त जो हमारे जो टीम की जो स्थिति थी, थोड़ा हलचल जरूर था, लेकिन विजय हमारी हुई। उसने हमको फॉलो किया और उसने कहा आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। हमने कहा कितना भी रुपए हम दे देंगे, लेकिन अभी तो चलते हैं, आप भी एयरपोर्ट जा रहे हैं, हम भी एयरपोर्ट जा रहे हैं। और कमाल वंडर देखिए, वो भाई कहां चला गया पता ही नहीं चला, हम एयरपोर्ट में उसका इंतजार कर रहे लेकिन वो हमें मिला नहीं। तो मेरे ख्याल से एक ही चीज जो यहां पर अटेंशन में हमें लाना है कि मुझे वापस अपने ओरिजिनल स्थिति में बार बार का अभ्यास, जब परिस्थिति ना हो, और उसी दिन का वरदान था परिस्थिति पर स्वस्थिति के विजय का, जो विजय भव का वरदान था। तो मैं समझता हूं जितना हम स्मृति में रखते हैं, अटेंशन में रखते हैं कि जैसे दीदी कह रही थी मैं कौन हूं, मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है, और मुझे संगम संगम युग में एक्सीडेंट ही नहीं होगा, संगम युग में कोई गाली नहीं देगा, वहां संपूर्ण सुख कोई बड़ी बात नहीं है, यहां गाली खा के संपूर्ण सुख, वहां पीठ दर्द भी नहीं होगा, और सुरेश भाई वहां लंबे घने बाल भी होंगे, तकलीफ भी नहीं होगा, यहां इसको हैंडल करके दुखी हो रहे हैं, ठीक है, और इसको हैंडल करके अगर सदा खुश रह सकते, ब्यूटीफुल समझ सकते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझ सकते हैं, तो 100% विजय, माया पर जीत पा रहे ना, माया इसके द्वारा मेरा पेपर ले रहा है, सत्युग में तो माया पेपर ही नहीं लेगी, सत्युग में तो पीठ दर्द ही नहीं होगा, तो मैं समझता हूं, प्लीज इस पर आप भी चिंतन, सत्युग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, संगम युग धीरे तुल्य, इस समय सब परिस्थितियों में वापस अपने आत्माभिमानी अपने स्वतोगुणी स्थिति में रहना, उसका अटेंशन मैं ख्याल से यही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं नजर आता है। ओम शांति।
एक शब्द बीच में भाई जी ने बोला था डिटैचमेंट, और यही है कि कितना न्यारा रह सके, तो मुझे याद आ रहा था एक कहानी मना प्रकाशमणि दादी के साथ की बात है, एक परी दादी जी, किसी ने सुनाया था, दादी जी किसी के साथ बैठे हुए थे और कोई बहन बहुत अपसेट थी, और वो आई तो अपसेट थी तो बहुत कुछ दादी को उसने बोला उस समय, क्योंकि थोड़ा गुस्से में थी, और फिर वो बोल बोल करके चली गई, तो बाजू वाली बहन थी तो उसने कहा दादी जी उसने इतना इतना गुस्सा किया, आप चुपचाप सब सुनते रहे, आपको कुछ तो कहना चाहिए था। तो दादी कहती मुट्ठी मैं यहाँ थी नहीं। तो कहा दादी आप यहीं तो बैठे थे, आप कोई तो 5 मिनट बोल करके गई, आप कहाँ थे, आप मेरे बाजू में ही तो बैठे थे। कहा मुट्ठी मैं यहाँ नहीं थी। कहाँ थे दादी? मैं घर चली गई थी। दादी मैं घर चली गई थी बाबा के पास, और मैंने बाबा को कहा इस आत्मा को अभी आपको जो देना है मेरे द्वारा इसको धुला करके आप इसको शांत और शीतल करके भेजो, मैं वहां पर थी नहीं। तो जैसे आप कह रहे थे कि जितना न्यारा प्रभु का प्यारा और सर्व का प्यारा हो पाएंगे तो शायद स्टेबल रह सकते हैं। हमारे बीच में अनीता बहन है जो इंदौर से पहुंचे हैं, दीदी भी ट्रांसपोर्ट की सेवाओं में बहुत एक्टिव रहते हैं, आप पहले टीचर थे, फिर बाबा ने आपको यहाँ पर भी बहुत सुंदर टीचर का पाठ दिया, 42 ईयर्स से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सरल हैं, आपसे बहुत अपनेपन की भावना आती है, और बहुत नजदीक से पिछले साल आपसे मिलना भी हुआ था, बहुत एक सॉफ्ट सरल हर्षितमुख नेचर है, तो दीदी आपका क्या अनुभव है और ज्ञान योग से आप कैसे परिस्थितियों को पार करते हैं, साथ में शेयर करेंगे।
ओम शांति। जैसे श्रेया बेन जी ने बताया ज्ञान में आई उस समय में स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में जस्ट ट्रेनिंग करके टीचरशिप शुरू की थी, तो शुरू शुरू में ज्ञान में जब आते हैं और सेंटर पे रहना शुरू करते हैं तो बड़ों के साथ में रहते हैं, स्वाभाविक ही है, तो उस स्थान पर बिलासपुर से मैंने ज्ञान में लिया, और 3 साल तक हमने सबसे पहला पाठ यही सीखा कि जो हमारे बड़े कहेंगे हमको वही करना है, तो क्योंकि टीचर थी तो थोड़ा सा घर का बंधन होता है, लेकिन मुझे कोई बंधन नहीं था। जैसे ही ओम प्रकाश भाई जी इंदौर वाले मिले मुझे, और मैंने तय कर लिया कि ब्रह्मा बाबा बाबा की मुरली सुनते हैं, शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा की बातें सुनते हैं, अव्यक्त में उनसे पालना लेते, लेकिन साकार में तो मुझे भाई जी जो कहेंगे ऐसा करना है। जस्ट ज्ञान में आने के 1 साल के बाद भाई जी ने कहा कि अब आप सेंटर पे रह करके डबल सेवा करो, यहाँ पर आने वाली आत्माओं की भी सेवा करो और स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाते हो वो पढ़ाई भी पढ़ाओ। और बहुत युक्ति से भाई जी ने कहा आप घर में ऐसा कहो, क्योंकि घर में बहुत बड़ा परिवार था, ज्ञान में कोई नहीं थे, भाई जी ने कहा कि उनको कहो कि मैं 1 सप्ताह के लिए जा रही हूँ, मैं सेंटर पे सेवा है 1 सप्ताह के लिए जा रही हूँ। तो हमने वही का वही सेंटेंस घर में कहा, और उन्होंने सोचा कि 1 सप्ताह की बात है, ठीक है, तो 1 सप्ताह से तो आज 43 ईयर हो गया, तो बाबा की मदद और बड़ों की आज्ञा, तो 3 साल तक मैं वहां पर रही। फिर 3 साल के बाद इंदौर ओम शांति भवन में बहुत सुंदर आर्ट गैलरी म्यूजियम का निर्माण हुआ। तो म्यूजियम में भी बहुत लोग आते थे, चूंकि यज्ञ में ही इस प्रकार का मधुवन के अलावा बड़ा स्थान था। तो उस स्थान की सेवा के लिए भाई जी ने कहा कि इस बार आपकी छुट्टी होगी गर्मी के, तो आप यहाँ आ जाना, इंदौर आ जाना 2-3 महीने के लिए। पूरे 2 महीने की छुट्टी उस समय होती थी। तो इंदौर में आए तो भाई जी ने कहा कि अब बच्चों की सेवा बहुत कर लिया, अब बड़ों की सेवा करूं। तो जो आज्ञा भाई जी ने कहा, और फिर हम दोबारा गए ही नहीं। हिसाब किताब करना है, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी नहीं किया। घर वालों को बोल दिया, आप लोग को जो करना है कर लेना, तो मैं बाबा के घर बेहद की सेवा, बड़े स्थान की सेवा में रहूंगी मैं। और वहां पर फिर एक ज्ञानांजलि प्रोग्राम चलता था हर सप्ताह। तो उस प्रोग्राम में भाई जी ने पार्ट बजाने के लिए ड्यूटी दी कि उसमें हर सप्ताह एक VIP बुलाना है, चीफ गेस्ट बुलाना है, एक अध्यक्षता के लिए बुलाना है, 2 गेस्ट बुलाना है, और फिर आएंगे तो उनको म्यूजियम दिखाना है, और फिर ये भी करना है। बहुत जल्दी भाई जी ने जिम्मेवारी दे दी, इसमें संचालन कौन बहन करेगी, इसमें अध्यक्षता अपने यहाँ से कौन, कमेंट्री कौन कराएगा। तो उससे काफी मुझे अनुभव हुआ। हालांकि साथ में विमला दीदी हैं, वो भी टीचर थी, तो भाई जी ने कहा इनके साथ में सेवा करना है। तो फिर 3 साल हम वहां रहे। फिर 3 साल के बाद फिर भाई जी ने एक ऐसे स्थान पर भेजा, 6 साल तो हम बड़ों की पालना में रहे, और 6 साल के बाद फिर भाई जी ने कहा कि अब थोड़ा आप इंडिपेंडेंट सेंटर संभालो। नया सेंटर एक खुला हुआ था और वो आदिवासी एरिया था, सरगुजा अंबिकापुर। तो उस स्थान पर 1 साल हुआ था सेवा केंद्र खुले। तो आप सभी समझते हैं, नया नया जब सेंटर खुलता है और वो भी ऐसे स्थान पर, तो कैसा मकान कैसा होता है, कोई साधन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं। तो उस स्थान पर हम गए सेवा के लिए, और मैं चूंकि निमित्त थी, मेरे साथ में जो बहन थी, वो बहन भी, उसको भी 3-4 साल हुए थे, और एक छोटी कन्या। तो हमको बड़ा नशा था कि भाई जी ने भेजा है, नया स्थान है, बहुत सेवा करनी है हमको, सेवा बढ़ानी है यहाँ की। और उस समय वो समय था यज्ञ के अंदर में 1991 में तपस्या वर्ष मनाया जा रहा था। जैसे हमारी दादियों ने 14 साल तपस्या की, 14 साल तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन 14 महीने सबको तपस्या करनी है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम मधुबन से आया था, किताब जैसे चार्ट था, रोज 4 घंटे की योग भट्टी करनी, बैठ करके 4 घंटे की भट्टी करनी है, अव्यक्तवाणी का अध्ययन करना है, और हूबहू जो जो प्रोग्राम आया था, चार्ट लिखना है, सब कुछ एजिटिज, जैसा जैसा प्रोग्राम आया था हम खुद भी करते थे, और क्लास वालों से भी हम वो सब करवाते थे, पेपर लेते थे, क्योंकि टीचर का संस्कार था तो सबसे परीक्षाएं भी सब भाई बहनों की लेते थे। खूब अच्छा योग ध्यान का वातावरण था। उसी बीच में 3-4 महीने के बाद एक ऐसी घटना घटी, बाबा ने ऐसा अनुभव कराया कि मेरे ब्रह्मा कुमारी जीवन का फाउंडेशन बन गया, और उसको याद करते ही बाबा की मदद और बाबा की सुरक्षा स्मृति में आते ही एकदम, वो स्मृति आते ही जैसे बाबा के लिए दिल से धन्यवाद शुक्रिया। वो समय ऐसा था, मुझे ये अनुभव बाबा ने कराया। हम सब पढ़ते सुनते हैं योग हमारी सुरक्षा कवच है, तो वो योग सुरक्षा कवच कैसे है? उस समय चूंकि नया स्थान था, तो मकान भी ऐसा था कि सिंगल स्टोरी मकान था, तो उसमें रात को 11:15 बजे रात को 11 बज रही थी, 3 व्यक्ति आए और दरवाजा खटखटाया। तो उस समय ऐसा होता था कि बिलासपुर सेंटर था नियरेस्ट, जहां से खुला था, तो इतने साधन सुविधाएं नहीं होती, बस कभी भी आ जाती, तो कभी आ जाते थे कुछ सामान देना है, कुछ मदोगरी जरूरत की चीजें। तो हमने कुछ भी सोचा नहीं और हमको ऐसा लगा, बहन को उठाया, हमने कहा कि घंटी बजरी कोई आया है। तो तीनों बहनें हम एक साथ गए बाहर और हमने देखा, जैसे ही लाइट जलाई दरवाजा खोला, तीन ऐसे व्यक्ति थे एकदम जैसे चोर भी नहीं कह सकते उनको, लेकिन गलत नियत से कोई आ जाता है। हो सकता है उनमें से कोई पहले आए होंगे, देखे होंगे कि यहाँ पर बहने रहती, यंग बहने रहती, आज से 35 साल पहले की ये घटना है, तब तो एज भी कम थी, 25-26 साल की एज थी हमारी, और दूसरे दिनों मैंने भी छोटी छोटी बहने थी। तो वो अंदर आ गए और चेयर में बैठ गए और कहने लगे कि आप जल्दी दरवाजा बंद कर दो, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। हमने कहा भाई आप तो गलत स्थान पर आ गए, ये तो हम आश्रम है, ये तो बहनों का स्थान है ये। तो वो और इधर उधर देखने लग गए, कहने लगे नहीं जल्दी दरवाजा बंद करो, जल्दी दरवाजा बंद करो, वो बिल्कुल अपनी बात पर अड़िग। हमने कहा बाबा अब हम क्या करें। बाबा ने टचिंग दी कि ये अंदर वाला दरवाजा बंद करके आप लोग अंदर चले जाओ, वो बैठे रहे। वो लोग हम अंदर चले गए, लेकिन अंदर जाने के बाद मन में तो क्या हुआ, हमने गलती तो नहीं कर दी, हमसे गलती हो गई। तो हमने कहा कि हम बाबा के कमरे में बैठते हैं, योग करते, बाबा उनको सद्बुद्धि दे देवे, चले जाए यहां से। लेकिन वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद इधर उधर टहलने लग गए, बाबा के कमरे के बाहर कदमों के हाट आने लग गई। तो दूसरी बहने बहुत डर गई, दीदी वो आ रहे हैं अंदर आ रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, बाबा को याद करो। एक पल ऐसा लगा कि बेडरूम में अंदर चले जाए, बंद कर ले दरवाजा, तो हमारा कमरा अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा लगा कि बाबा के पास ही हमको बैठना है। और उस समय वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता था, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। और ऐसा लगा कि बाबा बिल्कुल ट्रांस लाइट से बाबा निकल के आ गए, गोद में बिठा लिया, जैसे माँ छिपा लेती है आंचल में बच्चे को छिपा लेती, ऐसा लगा बाबा ने छिपा लिया हमको। और वो तीनों छत पे चढ़े और छत में जैसे पुराने जमाने का मकान होता, आंगन के ऊपर छत खुला होता है, तो वो कूद के अंदर आ गए, जोर से आवाज आई, हम तीन बहनें और वो तीन व्यक्ति, जोर बहनें बहुत डरने लग गए। हमने कहा कोई बात नहीं, पहले तो हमने ट्रांस लाइट हल्की जलाई थी, फिर हमने कहा कि जला दो सब, लाल लाइट भी जला दो, सफेद लाइट भी जला दो, सब लाइट जला दो, और खूब पावरफुल बाबा की याद में बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि बाबा के नैनों से ज्वाला निकल रही, और वो नए व्यक्ति इधर देखे और चलते चलते उसी कमरे में आ गए। फिर हमने कहा कि आओ भैया, बाबा के घर में, भगवान के घर में, आपके पिता के घर में आपका स्वागत है। तो वो देखने लगे, समझ में नहीं आया, बिठा दिया उनको बाबा के कमरे में, लेकिन उनको तो समझ में क्या है बाबा का कमरा क्या है। और फिर अंदर से ऐसा लगा कि इनको थोड़ा सा बिजी करना चाहिए, और उनको बाबा का ज्ञान सुनाना शुरू किया। मैंने कहा अगर मैं डरूं तो ये दोनों छोटी बहनें तो और डर जाएंगे, तो फिर आप कौन है, आप जानते हैं। इधर देखे, थोड़ा सा साइलेंस हुए। हमने कहा आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। फिर हमने कहा आप भगवान के बच्चे हैं, आप शुद्ध पवित्र आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। अच्छी तरह से उनको आत्मा का परिचय दिया। फिर हमने कहा कि शिव बाबा भगवान, वहां से लोग, उस समय सावन का महीना था, वो जल चढ़ाने के लिए बाबा बैजनाथ धाम जाया करते थे। तो हमने कहा कि लोग जो बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं वो यादगार है, वो परमात्मा ज्योति बिंदु शिव आपका पिता है वो। तो उन्होंने कहा कि आप मिलते हो भगवान से, आप मिलते हो? हमने कहा रोज मिलते हैं हम लोग भगवान से, मिलते हैं, भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, ये धर्म लाने का समय, भगवान आए हैं धरती पर। तो थोड़ा सा उनको कुछ लगा, फिर उन्होंने कहा कि हमको भी मिलवाओगे भगवान से? तो हमने कहा आपको बिल्कुल मिलवाएंगे, लेकिन आप तो आप दिन में आने के लिए प्रॉमिस करो, यहाँ पर एक घंटे का 7 दिन का कोर्स होता है। फिर हमने उनको बाबा का परिचय दिया, हमने कहा कि अब आप बाबा को याद करें, हमारा टाइम हो गया है योग करने का। और सब एकदम साइलेंस में बैठ गए, एक गीत बजा, दो गीत बजा, फिर एकदम उनका मन बदल गया, उठे और उन्होंने पैर छुआ, बहन जी हम सचमुच में गलत आ गए थे, हम आएंगे कभी और आप लोगों से हम लोग ज्ञान सुनेंगे, हमको माफ कर देना, माफी मांग करके चले गए। तो हमको ऐसा लगा कि सचमुच में बाबा कितना कल्याणकारी, बाबा ने ऐसा अनुभव कराया, बिल्कुल निर्भय, डर नहीं लगा, क्या क्यों का संकल्प नहीं चला, बाबा बैठा है। और वो 3 घंटा बीत गया, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक इधर उधर घूम रहे थे हम, बाबा को याद कर रहे थे। फिर सवेरा हुआ, बाबा को धन्यवाद दिया, फिर क्लास वाले आए, हमने कहा आप लोग रोज अनुभव सुनाते हैं, आज हम बहने अनुभव सुनाएंगे। फिर तो फिर वो सब मकान मालिक के पास गए, वो सारी व्यवस्था किए, जो खुला हुआ था सब पिक करवाया। मकान मालिक ने भी कहा आपको जो जो करवाना है मकान के अंदर करवा लो, बिल बना के हमको दे देना। और अगले दिन 15 अगस्त था, वो 14 अगस्त की रात का दिन था और हमारा प्रोग्राम था कलेक्टर साहब के साथ में। तो कलेक्टर साहब के साथ में 15 अगस्त का स्पीच देना था, तो हमने बाबा के ऊपर छोड़ दिया। अब रात भर तो हमारा ऐसा गुजरा, तो हमने कहा बाबा आपको जो सुनाना है, आप ही हमारे रक्षक तो आप ही हैं, और जो भी बाबा ने सुनाया होगा वो मुझे याद नहीं है, लेकिन कलेक्टर साहब को इतना अच्छा लगा वो भाषण, उन्होंने कहा जो दीदी ने कहा ना वही हमको करना है, दीदी ने कहा है वही हमको करना है। ये बाबा का कमाल, बाबा की मदद, लेकिन मदद कब मिलती है, जब हम दिल से उनको याद करते, दिल से जितना हम भगवान पर समर्पण होते उतनी बाबा की मदद मिलती। और आज तक भी बाबा की कई सेवाओं में बाबा की मदद मिलती रहती, लेकिन मदद के पहले हिम्मत हमारी चाहिए, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप।
बहुत सुंदर, बाबा कहते हैं ना हर एक की एक अपनी भागवत होती है, पर बाबा का भी ये वायदा है कि अगर मेरे बच्चे दिल से बुलाएं और कहें मेरा बाबा, और बाबा न हाजिर हो, ये हो ही नहीं सकता। मैं समझती हूँ आप सबके भी दिल का यही, हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अनुभव होगा। बाकी हमारे सिरसा से बिंदु बहन भी पहुंचे हैं, बिंदु बहन का भी हम स्वागत भी करते हैं। दीदी तो 17 साल की आयु में समर्पित भी हो गए थे और काफी बंधन भी शायद सहन करना पड़ा था, और अभी आपको भी 44 ईयर्स से ज्यादा बाबा की सेवाओं में समर्पित रूप से सेवाएं देते हुए हुआ है। तो आप भी अपने दिल का जो भाव है, बाबा के साथ के अनुभव हैं, सेवाओं के अनुभव हैं, हमारे साथ शेयर करेंगे।
ओम शांति। 50 वर्ष पहले 77 में, 49 ईयर पहले, हर्षित भाई थे, पांडव भवन में भंडारे में हुआ करते थे, हर्षित काका बोलते थे उनको, उनकी युगल भी थे, वो हमारे मामा जी के दोस्त थे। ज्ञान का बीज उनसे डला, फिर उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप अपने शहर में सेंटर खुलवाओ, तो हमारे लौकिक भाई पिताजी उन्होंने सेंटर खुलवाया। तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही डिक्लेयर किया कि ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, तो कहते थे हम लोग जैसे लौकिक में अग्रवाल फैमिली है, बनिया परिवार जिसको कहते हैं, कहते नहीं बनिया की बच्चियां नहीं बनती होती। बोलने तो कुछ देते नहीं थे, हम जो भी बोलते थे वो कहते थे नहीं बड़ों के आगे बोलते नहीं होते। 50 साल पहले तो यही वातावरण होता था और बनिया परिवार में खास हर बात का जवाब देना बड़ों का जरूरी नहीं होता, लेकिन वो इतना काम आया, फिर ऐसा ही हो गया अभी अब कोई जवाब देना ही नहीं, बस हमारे सारे जवाब बाबा ही देगा। तो कोई मेहनत तो मुझे कभी महसूस हुई नहीं ज्ञान मार्ग में, शायद जो बाबा कहता है मोहब्बत होती है तो मोहब्बत में मेहनत महसूस नहीं होती। तो भक्ति काल में भी बाबा को बहुत याद करते थे, भक्ति के हिसाब से व्रत रखते थे। फिर वो हर्षित काका कहते थे जिसके तुम व्रत रखती हो, जिस पे जल चढ़ाती हो, इसको अगर मिला दें तो बड़ा ही एक रोमांचक सा शब्द होता था कि मिला दें ये भी हो सकता है। तो वो भी दिन आ गया, बाबा से सन्मुख मिलना हुआ और बाबा ने वरदान दिए दो विशेष, जो जीवन का लक्ष्य बन गया कह लो, विजन बन गया कह लो। पहला था कि तुम्हारी सच्ची लगन है, तुम्हें निश्चय है, तो लगन के आगे विघ्न ठहरते नहीं है। क्योंकि जिस समय हम मिले मेडिटेशन हॉल में, तब तो बाबा एक एक से पर्सनल मिलते थे, एक एक को वरदान देते थे, उनकी समस्या सुनते थे, उनको समाधान बताते थे और अपने हाथ से दृष्टि टोली देते थे। उस समय हम लोग मिले हुए हैं। और दूसरा वरदान बाबा ने दिया कि तुम्हें दोनों पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेना है। तो मेरा निश्चय और भी बड़ा हो गया, एकदम 100% हो गया कि बाबा को ये भी पता है कि मैं लौकिक पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेती हूँ क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ाई की कोई बात ही नहीं की। तो बाबा ने मुझे कहा दोनों पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेना है। तो मुझे लगा कि वाकई भगवान को पता है कि ये लौकिक पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेती है। बाबा ने शायद अपनी सेवा लेनी होती होगी तो लौकिक में भी पढ़ाई अच्छी थी और अलौकिक में भी अच्छी है। और बाबा ने, मैंने ये देखा है कि जैसे वो लौकिक वाले बोलने नहीं देते थे ना, कुछ छोटे थे, तुम छोटी छोटी हो तुम्हारा बोलना ठीक नहीं होता बड़ों के आगे, तो वो चीज भी एक लेसन सीख लिया कि बड़े जो कहें सत वचन, उनके आगे बोलना नहीं है। अलौकिक में भी वो चीज धारण कर ली कि बड़ों के आगे बोलते नहीं होते हैं, तो वो चीज से बड़ा सुकून मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत शक्ति भी मिलती है, दुआएं भी मिलती हैं। तो आज भी जैसे बाबा ने कहा ना, नशा हो कि मैं आत्मा हूं, ये भी नशा है, देह का नशा नहीं, देह की पोस्ट पोजीशन का नशा नहीं, लेकिन आत्मा वाला नशा। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा था कि पाप कर्म तो पाप कर्म है ही, लेकिन आपको अगर अपने पुण्य कर्म का या अपने कोई अच्छी क्वालिटी का भी नशा है, नशा नहीं उसको मतलब अहंकार कह सकते हैं, तो ये भी पाप है। तो बहुत अटेंशन रहता है इन चीजों पे, क्योंकि दाता को हमें नहीं भूलना है। हमारे पास आज जो भी है, हम जो भी हैं, हम उसकी बदौलत है, उसके बनाए हुए हैं, उसकी कठपुतली है, जैसे वो चला रहा है और हम चल रहे हैं, हम अपने आप में कुछ नहीं है। और आप और हम सब जितने भी बैठे हैं, चाहे बाबा ने बोलना सिखाया, वो भी बाबा ने सिखाया बताया, लौकिक वाले तो बोलने ही नहीं देते थे, लौकिक ने कहा खूब बोलो, भाषण करो, ज्ञान सुनाओ, प्रवचन करो, मंच पे आओ, लौकिक वाले तो जी चांस ही नहीं देते। अगर कोई मौका मिलने के बाद अगर आप कुछ बन भी गए हैं तो हमें ये तो नहीं भूलना है ना, बनाने वाला कौन। कभी कभी ये बहुत सूक्ष्म माया है, कुछ अच्छे स्पीकर भी बन जाए ना, कभी कभी उनको अभिमान सा आ जाता है कि हम बहुत ऊंचे उठ गए हैं, बाकी हमारे आगे क्या है। ये बहुत ध्यान हम सबके लिए रखने की बात है। दूसरी बात जो ध्यान में रखती हूँ सेवाओं में भी, तो मैंने देखा है उसमें सफलता ज्यादा मिलती है, बस वो भी बाबा को ही सौंप देते हैं कि बाबा आपने जो कराना है, हमें तो कुछ आता जाता नहीं, कुछ पता नहीं, आप जो डायरेक्शन देंगे, जो टच करेंगे, हम वो करते जाएंगे। एक बार मेरे से कोई कहता, कोई अगर स्ट्रेस हो जाए तो कैसे रिलीज करते हैं, मैंने कहा मेरे को कोई अनुभव तो नहीं है, पर हाँ बाबा रोज बताता है हमें मुरलियों में, या कुछ लोगों को बाबा की बताई हुई बातें हम बताते हैं,
बाबा ने इस मुख द्वारा कुछ बुलवाया और किसी का स्ट्रेस दूर हुआ तो वो बता सकते हैं, बाकी मुझे कोई अनुभव नहीं है कि कभी भी कोई स्ट्रेस हुआ हो। जब से बाबा के बने सब कुछ बहुत सहज ही अपने आप होता चला गया। सिरसा में भी बाबा ने एक बड़ा भवन बनाया लगभग 1 एकड़ में, तो उसका उद्घाटन था 8 नवंबर 2022 को और 2-3 नवंबर को काफी सारे काम चल रहे थे। तो बहने मेरे को कहने लगी आपने थोड़ा सा ना जल्दी बुला लिया, थोड़ा सा और लेट कर लेते तो सारे काम पूरे हो जाते। मैंने कहा क्या हुआ, इस हॉल में अगर ये वाली चेयर नहीं रखी तो दूसरी चेयर रख देंगे, उद्घाटन हो जाएगा 4-6 महीने बाद, ये वाली चेयर बन जाएंगी तो इसमें क्या बड़ी बात है, बिल्डिंग तो बनी गई है, इंटीरियर की बात है, जितना हो गया ठीक है उद्घाटन करा लो, फिर जब कभी बनेगा फिर बन जाएगा, बस देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज नो प्रेशर। मतलब बाबा करवाता है, मेरा तो हर स्टेप पर सेवाओं में ये अनुभव है और उसमें सफलता भी बहुत बाबा दिलाता है। बस कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, क्या ये बाबा की छुट्टी है, क्या ये बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग है, बाकी तो बाबा रोज कहता है और रोज हम फील करते हैं, बच्ची तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। दादी जानकी कहती थी वंडरफुल बाबा, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। ऐसी कुछ चीजें दादियों की और बाबा की वो संजो करके अपने पास रखी हुई हैं और उसके बेस पर आगे बढ़ते रहते हैं। और बाबा ने जो वरदान दिए थे दो आपको शुरू में बताए तो वो भी साथ ही चल रहे हैं पहले दिन से ही आज दिन तक। और आज भी बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी, तुम्हें पढ़ाने वाला कौन, तुम्हारे सामने कौन है, अगर ये दो बातों का भी नशा रहे हमें 24 घंटे और 24 घंटे रह सकता है, एक कोई मिनिस्टर की बच्चे होते हैं ना उनको 24 घंटे नशा रहता है, मिनिस्टर के बच्चे हैं, हमारा कोई काम नहीं रुकेगा, हमारे सारे काम हो जाएंगे, हम तो मिनिस्टरों के मिनिस्टर ऑलमाइटी गॉड के बच्चे हैं, तो हमारा तो कोई भी जेन्युइन काम जेन्युइन संकल्प रुक ही नहीं सकता है। और ये नशा उनको 24 घंटे रह सकता है संसारिक लोगों को, तो हमको क्यों नहीं रह सकता है। सारा कुछ बाबा को सौंप दो, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। बाबा जिनके साथ है कौन उसके अगेंस्ट है इसका कोई महत्व नहीं है। ये सारी बातें 24 घंटे घूमती रहती हैं और इतना नशा रहता है, इतना उमंग रहता है। लौकिक में हमारा परिवार कहता था आप इस जन्म में भूल जाओ कि तुम्हें कभी ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। बस फिर बाबा को कहते थे बाबा जी बोलने तो देते नहीं, अब आप देखो, और बनना तो है ही, और बनाया उन्होंने, बनाया अपने हाथों से समर्पण कराया, और बार बार कहते थे भूल जाओ इस जन्म में कभी नहीं बन पाओगे, मन में सोचते थे कि तुम ही बनाओगे और बनाया भी उन्होंने। मतलब बाबा वो काम करवा लेते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन सिर्फ निरहंकारिता, एकदम निर्विकारी निरहंकारी, बाबा की श्रीमत का पालन और अपने बड़ों के प्रति रिगार्ड, बड़ों ने जो कहा उसमें कल्याण समाया हुआ है। ये चीज जिस दिन हमारे दिमाग में फिट होगी ना, अब हमारे लिए बड़े कौन, देखो बाबा चले गए दादियां भी चली गई, जो निमित्त दीदियां हमारे सामने हैं हमारे लिए बड़े, आप जिस भी स्थान पे हो वो साकार ब्रह्मा के रूप में, मास्टर ब्रह्मा के रूप में वो हमारे सामने हैं। और बाबा ने हमें यहाँ तक कह दिया है कि अगर उन्होंने कोई गलत राय देते नहीं है, पर हमें लगती है कभी कभी भी शायद इनको पूरा पता नहीं, बाबा ने कहा कुछ गलत भी दी तो भी उसका जिम्मेवार मैं हूँ। इतनी बड़ी गारंटी भगवान ने ले ली है, तो इसलिए हमारे वरिष्ठ दादियां दीदियां और बाप दादा हमें जो डायरेक्शन मुरली में दे या साकार द्वारा दे वो हमारे लिए श्रीमत है, उसका पालन हमें अच्छी रीति करते हुए आगे चलते जाना है। सेवाओं का भी बोझ नहीं रखना, कैसे सेवा बढ़ेगी कैसे होगा, बस बाबा की मुरली में जो डायरेक्शन मिले करते चलो, सफलता आपके साथ है। ओम शांति।
एक वाइन का नशा होता है और एक डिवाइन का नशा होता है, तो हमने अपनी सारी ही दीदियों के अंदर वो डिवाइन के प्रति जो नशा है वो देखा गुलजार दादी को कई बार कोई पूछते थे ना दादी जी मुरली याद नहीं रहती है तो दादी जी बड़े प्यार से कहते थे कोई बात नहीं वरदान तो 4-5 लाइन का होता है उतना ही याद कर लो तो फिर कहते थे दादी 4-5 लाइन भी याद नहीं रहती है तो कहा अच्छा स्लोगन तो एक लाइन का है चलो वो एक लाइन याद कर लो फिर उसमें से कहीं कहते थे दादी जी एक लाइन भी याद नहीं रहती है तो कहा अच्छा दो शब्द तो याद रहेंगे ना दो शब्द कौन सा है मेरा बाबा चलो वो भी याद कर लो और फिर दादी कई बार कहती थी अच्छा दो भी याद नहीं रहे ना तो एक शब्द बस एक शब्द भी अगर पक्का कर लिया इस ब्राह्मण जीवन में और वो एक शब्द था करण करावन हार अगर ये एक शब्द पक्का है कि करण करावन हार बाबा है तो फिर वो नशा वो निश्चय और वो निश्चिंत अवस्था रह सकती है बहुत बहुत दीदी का भी शुक्रिया और अभी हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश भाई जी हैं आप ट्रांसपोर्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और 49 इयर्स से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आप भी अपने अनुभव थोड़ा बहुत आप कैसे ज्ञान में आए क्या आपका विशेष पुरुषार्थ रहता है हम सभी के साथ भाई जी भी शेयर करेंगे
ओम शांति आप सब यहीं है ना ओम शांति जैसे गिरीश भाई कह रहे थे ना कि तो इसलिए मैंने पूछा कि मुझे तो ये तो पता हवा आ रही है लेकिन इधर से आवाज नहीं आ रही है ये पूछा आप यहीं हैं क्या लेकिन जहां तक ज्ञान की बात कहें या अनुभव की बात कहें तो मैं तो ये कहूंगा कि आई एम ए ब्लेस्ड सोल एक बहुत साधारण परिवार में जन्म होने के बावजूद बचपन से ही मुझे तो सब कुछ मिला है बिना मांगे मिला है ऐसा समझ लीजिए ज्ञान में आने के समय जो उम्र की बात करें तो लगभग 11.5 वर्ष की उम्र थी और उस समय पर ज्ञान के 7 डेज कोर्स के दौरान ही सारी नियम मर्यादाएं सुना दी जाती थी तो हमारी जो दीदी जितना प्यार की पालना देती थी उतने ही ज्यादा नियमों के प्रति सख्त थी तो खान पान की बात कहो रहन सहन की बात कहो कुछ भी कहो उनकी पालना से हम एकदम जिसको कहते हैं ना कि बाबा के शब्दों में अगर कहें तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो शब्द कहते हैं तो माना जो बाबा के नियम हैं उन्हें पूरी तरह से पालन करना ये हमें सीखने को मिल गया और जब ज्ञान की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है ना हमारे 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान योग धारणा सेवा ज्ञान सुनते हैं योग करते हैं तब धारणा आती है फिर हम सेवा में आगे बढ़ते हैं और हमारी गाड़ी रिवर्स गियर में चली हुई है पहले से ही बहुत छोटे थे सेंटर पे जाना शुरू किया तो दीदी कहती राजा ये कर लो हम तो उनके वहीं कमरे में जाके सो जाते थे उठाती थी बेटा खाना खा लो मतलब कहने का है कि वो जो पालना मिली थी उसका असर ये हुआ कि ये सेंटर नहीं ये हमारा घर है ये आश्रम नहीं है हमारा अपना घर है तो सेवा सेवा नहीं यानी कि हमारा अपना कार्य हुआ ना जैसे घर में कोई नौकर काम करता है उसकी जगह आप करते हैं दोनों में क्या अंतर होता है ना अंतर होता ना ऐसे ही बाबा की सेवा करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता था हमें सेवा करने में खुशी होती थी और ब्लेस्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं एक मधुबन के तौर पे पहली बार मधुबन में मैं 78 में सेवा के लिए आया था और पहली ही मीटिंग कहो हमारी सीनियर मोस्ट यानी कि दादी प्रकाशमणि जी से क्यों हुई वो भी एक घटना है कि जो चीज बचपन से अंदर होगी कि किसी की पर्सनल बातों में नहीं जाना है, जो सिखाया गया था। तो किसी ने मुझे कहा ये सेवा करो, वो मुझे लगता था ये तो पर्सनल सेवा है, तो मैंने कहा ये सेवा मैं नहीं करूंगा। तो वो भाई बोला नहीं करनी पड़ेगी तुम्हारे को, तो मैं क्यों करनी पड़ेगी, नहीं करूंगा। तो फिर मैं दादी प्रकाश मुनि से मिलने के लिए वहां थल्ले पे जाके बैठ गया। शीलू दीदी आई, वो मुझे कहती यहां क्यों बैठे हो, मैंने कहा मुझे दादी जी से मिलना है। और दादी जी से मिलना है तो क्यों मिलना है, मुझे बात करनी है। आप देखिए एक 16 साल का बच्चा चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से मिलने के लिए इतनी डेयरिंग हो, ये ब्लेस्ड ही हो सकता है। दादी से मिले, मैंने उनसे कहा दादी ऐसे ऐसे बात है, दादी ने कहा बिल्कुल नहीं करना तुम, मैं उसको बोल दूंगी, तुमको दोबारा नहीं बोलेगा। और उसी दौरान ही, उस समय तो दादियां जो है कितना केयर करती थी, जैसे सेंटर पे दीदियां हर चीज का ध्यान रखती थी, वैसे ही दादियां सेवाधारियों के कमरे में भी जाती थी, हम कैसे रहते हैं क्या करते हैं वो सब जानकारी रखती थी मधुबन में। तो एक बार हमारे कमरे में दादी जी चक्कर लगाने आई और सेवाधारियों के जहां उसको कहते हैं एरोप्लेन बिल्डिंग का नाम, जो मधुबन पांडवन में है सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसमें बहुत खुली हवा आती है इसलिए उसको एरोप्लेन नाम दिया हुआ था। तो उसमें एक कमरे में हम थे, दादी ने अलमारी खुलवाई, ये कपड़े किसके हैं, तो जिसके थे उसको बताया कि दादी इसके हैं। तो दादी ने एक ही शब्द बोला, घड़ी करके नहीं रख सकते, दादी तो कह के चली गई, यानी कि सिंधी में घड़ी करके रखने मतलब समेट करके सहेज के रखना, दादी चली गई। लेकिन उस भाई को बहुत फीलिंग हो गया तो वो एक दूसरे को कहने लगा। तो दादी के सामने उस कमरे वाला तो मैं ही था, तो दादी ने मुझे बुलाया, उसको बुलाया और पूछा, क्योंकि दादी का आपको अनुभव होगा, दादी कभी फर्स्ट पर्सन में बात नहीं करती थी, थर्ड पर्सन में बात की, दादी ऐसा चाहती है, दादी का ऐसा विचार है, दादी ऐसा कहती है, वो ये नहीं कहती मैं आपको कह रही हूं। तो दादी ने मुझे बुलाया और पूछा, सुरेश दादी जब चक्कर लगाने आई थी तब दादी ने क्या कहा था। तो मैंने कहा दादी आपने तो बस यही कहा था कि घड़ी करके नहीं रख सकते क्या। तो दादी ने और तो कुछ नहीं कहा ना, नहीं ये देखो फीलिंग का फ्लू लेकर के घूम रहा है। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इतनी बड़ी हस्ती है और इतनी छोटी सी बात को भी क्लियर करने के लिए आमने सामने बिठा के बात कर रही, वो लेट गो भी कर सकती, उसको कौन पूछने वाला था। लेकिन उनसे उस बात से दिल में ये हो गया कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना है, हर बात को ध्यान में रखना है और जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार उसको संभालना है। तो दादी की उस बात से ही जीवन में शक्ति भरने का काम करना और शक्ति का प्रवाह करना, क्योंकि वो सशक्त कर रही थी एक प्रकार से हमें अपनी अंदर की स्थिति के आधार पर। और अनुभव के आधार पर अगर हम बात करते तो परिवार में अगर हम बात करें तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी जो छोटी सिस्टर है कमल दीदी, जिनको आपने कल शायरी के उस डायलॉग में सुना था, वो एडवांस पार्टी की आत्मा है, ऐसा मेरा अनुभव या मानना है। उनके आने के बाद ही हमारा पूरे परिवार का कायाकल्प हुआ है, एक साधारण परिवार से हम अच्छे परिवार वाले बन गए, सारे बाबा के बच्चे बन गए, तीन समर्पित हो गए और माता पिता भी ऐसे ही चलते जैसे समर्पित हों। आज हमारी माताजी भी सेंटर निवासी ही है पिताजी के जाने के बाद। लेकिन व्यक्तिगत पुरुषार्थ की जब हम बात करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, हम अंदर से अगर सशक्त रहते हैं तो हम उन्नति करते रहते हैं। और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसी के प्रति कभी नेगेटिव ना सोचें ना करें, दोनों बातें हैं। हालांकि जैसे श्रेयाबेन गिरीश भाई से पूछे थी, परिस्थिति आती है तो कुछ तो हलचल होती होगी, तो परिस्थिति आती है उस समय पे स्वाभाविक रूप से एक मानव के नाते से संकल्प चलते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, चाहे कोई कैसा भी, मुझे पता है इसी व्यक्ति ने मेरा ये नुकसान किया है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो बोलचाल के लेवल पे गलत तरीके से व्यवहार हो। और उसका एक अनुभव ये भी है कि मधुबन में रहते हुए, एक डिपार्टमेंट में सेवा करते हुए, जैसे अपेक्षा होती है ना कि हमारे बीच रहे, और वो चीज मुझे लगती थी कि ये नेगेटिव है, तो मैं उनकी बात को नहीं सुनता था, डिपार्टमेंट इंचार्ज होने के बावजूद भी नहीं सुनता था और नहीं मानता था ये कह सकते हैं, तो मेरी शिकायत होती थी। जैसे राजू भाई सुना रहे थे ना कि दादियों के पास, बड़ों के पास, तो मेरी शिकायत होती थी, लेकिन मैं जैसे कर रहे हैं शिकायत करने दो। फिर दादी ने एक बार मुझे बुलाया, सुरेश वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे होता है, वो ऐसे ऐसे चाहते हैं, अब आप बताइए जैसा आप कहें वैसे। बोला नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओ। और उल्टी बातें जो होती हैं उसका प्रभाव होता है, तो कुछ ना कुछ तो लोग बोलते ही है ना, लेकिन दादी जी का मेरे प्रति क्या था मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके प्रति मेरा जो श्रद्धा का भाव था उसके कारण मैं कोई भी बात उनसे छुपाता नहीं था, कुछ भी हो जो जैसा हुआ वैसा का वैसा ही जाके बता देता था। जब मुझे बुलाया जाता था तो मुझे जो वो पूछते थे मैं उसका जवाब भी वही देता था जो एक्चुअल स्थिति होती थी। उसके कारण उनका आशीर्वाद मुझे जो मिला, उसके कारण ही आज मैं मधुबन निवासी हूं, अदरवाइज मैं मधुबन निवासी तो बनना ही नहीं चाहता था। उन्होंने एक बार ऐसे ही खाना खाते के बाद रात को वॉक करते समय मुझे पूछा, सुरेश दादी पूछती है वहां क्या करते हो आजकल, तो मैंने कहा दादी मैं पिताजी के साथ बिजनेस करता हूं। दादी कहेगी अब आपका वहां कोई काम नहीं है, मैं बिजनेस कर रहा हूं अच्छा खासा, पिताजी के साथ सहयोगी हूं, और दादी मुझे कह रही आपका वहां कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक शब्द भी नहीं था। उन्होंने दादी ने यही कहा अब आपको यहीं सेवा करनी है, और वो सेवा में आगे बढ़ने का आधार और मधुबन निवासी बनने का आधार बना। लेकिन जहां तक बाबा की शक्ति की बात आती है या बाबा की आशीर्वाद की कृपा की बात आती है, तो जब मैं पहली बार बाबा से 1980 में मिला था मेडिटेशन हॉल में, तब जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही मैंने भी पूछा, बाबा मुझे सब कहते हैं सेवा करो तो क्या करना है, तो बाबा ने कहा बच्चे अच्छे से पढ़ो फिर सेवा की बात। और मुझे लगता है वो पढ़ाई मेरी अब तक चल ही रही है, और मैं पढ़ते पढ़ते ही सेवा में आगे बढ़ रहा हूं, भले ही मैंने 7 डेज कोर्स आज तक नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है, तो बाकी सब तो चल रहा है, योग अच्छा है, लेकिन ज्ञान अभी तक सीख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं और कुछ सीख पाऊं और आगे बढ़ पाऊं। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की मेहर है कि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है। चाहे विंग की बात करें तो हमारी दिव्या दीदी जी हैं, हर कदम पे हमें आगे बढ़ने का सहयोग नहीं देती है, आशीर्वाद देती है। इसलिए मैंने कहा ना कि ब्लेस्ड हूं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए वर्तमान में अगर विंग की बात करें तो भी आशीर्वाद के रूप में ही आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जहां सेवाओं का मौका मिलता है जाते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं और बाबा के कार्य में सहयोगी बन करके अपने आप को खुश नसीब मान करके खुशी खुशी से इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब शांत,
एक बार सभी तालियों से, बहुत सभी ने अपने दिल के, अपनी बहुत सरलता से, सच्चाई से अपने अनुभव हमारे सामने रखे। मैं समझती हूँ सिर्फ 2-3 मिनट ही हमारे पास हैं, तो प्रश्नोत्तर तो नहीं हो पाएंगे, केवल अश्विना बहन से एक प्रश्न करेंगे क्योंकि दीदी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है। बच्ची का ग्रुप बैठा हुआ है, काफी समय से सभी योग तपस्या कर रहे हैं, पहले दिन से ही हम मेहनत करते हैं कि मन में कोई प्रकार का व्यर्थ नहीं हो, विकल्प नहीं हो, पर एक शब्द जो बाबा कई बार कहता है चित्त, आपका चित्त भी साफ हो, आपका चित्त भी निर्मल हो। और मुझे एक क्लास में याद है जानकी दादी ने कहा था चित्त माना मेमोरी ट्रैक, माना पीछे तक सारा क्लीन हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, कैसे वो चित्त बिल्कुल साफ और सरल रहे, निर्मल रहे।
ओम शांति। वर्तमान जो अभी हमने लास्ट बाबा की मुरली सुनी थी जिसमें बाबा ने एक बात बताई थी कि वारिसों की वृद्धि हो सकती है, क्यों लग सकती है, सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्यों लग सकती है, लेकिन बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे ही व्यर्थ की क्यू में खड़े रहते हैं तो वारिसों की क्यों नहीं लग रही है। एक बहुत साधारण एक छोटा सा ये वाक्य लास्ट अव्यक्त मुरली में था। तो एक बात याद रखिए कि व्यर्थ की क्यू में मुझे खड़ा रहना ही नहीं है, चाहे वो पास्ट हो चाहे कुछ भी हो, मुझे केवल यह याद करना है कि ये सेवा मेरे क्यू में खड़े रहने से, क्योंकि मैं ही क्यू में खड़ी हूं तो मेरे से लेने वालों की लाइन कैसे लग सकती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमको दी है, समय है वो वाइंड अप होता जा रहा है, यदि हम नहीं करेंगे। साइलेंस पावर, हमने देखा कि मोहिनी दीदी से भी अभी हम लोग मिल रहे थे, दादी जान की तो बहुत रही ही है इन बातों में, लेकिन मोहिनी दीदी ने भी यही कहा कुछ भी कहने की कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं, साइलेंस पावर। तो हमारी जो भी पड़े हैं वो केवल साइलेंस पावर का उपयोग कर रहे हैं, चाहे कितनी भी बातें हो लेकिन यह फुल स्टॉप लगा दो कि व्यर्थ सोचना ही नहीं है। और ये इमेजिन कर लो कि क्यों तो आने को तैयार है, मैं खुद ही पात्र लेकर हम खड़े हुए हैं, कैसे बाबा हमसे काम करवाएंगे। और इसलिए तुरंत ही हमें क्या करना है। और एक कोई बात हुई थी जनरली यज्ञ में, बहुत हमारे पास तो बॉम्बे से लेकर यूपी तक के बहुत अनुभव है, लेकिन जो हमारे जो बड़े हैं उनका एक इशारा बहुत अच्छा है, वो हमेशा कहते हैं कि इस यज्ञ को बाबा चला रहा है। हमें व्यर्थ तभी लगता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो हमेशा बड़े कहते हैं बाबा देख रहे हैं। जब बाबा देख रहे तो मुझे देखने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। और इतना वो साइलेंस हमारे अंदर आ जाता है। और दूसरी बात की अलग अलग आत्माओं को थोड़ा समझ ले हम। अभी एक मोहिनी दीदी ने एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक बात बताई, और वैसे भी है कि कहते जब हम किसी को समझाते हैं तो आजकल लोग कहते चलो ये टेप रिकॉर्ड शुरू हो गई, रिकॉर्ड शुरू हो गई, कहते समझाने की भी जरूरत नहीं है, साइलेंस। कहा कि एक बहन है वो इस बात से समझती है कि जैसे हम गए और हमने कहा आलू बड़ा बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, और हम चले गए। जब दोबारा जाना था तो दूसरी बहन को कहना था, तो दूसरी बहन का हमें पता है कि ये शायद केच न करे, तो हमने उसको डिटेल प्रोग्राम दिया, एक कुकर आलू, एक ऐसे इतने लोगों का, ये करना है, वो करना है, चार बार समझाया, क्योंकि वो चार बार से समझ रही है। तीसरी है उन्हें आराम से और आराम से समझाया। यदि हमें ये सारी टेक्निक बड़ों की आ जाए कि ये इशारे से समझेगा इसको चार बार, तो दादी जानकी ने एक बार उन्होंने प्रश्न किया था कि दादी वो समझ नहीं रही है, तो कहा तुम तो समझ रहे हो ना, वो नहीं समझ रही, तुम तो समझदार हो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल बताया, मैं याद रखती हूँ, कि एक कार्यक्रम चल रहा था विदेश में ही, और कहा माइक में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, तो
तो दादी बहुत साइलेंसली बैठी हुई थी और उन्होंने कहा मुझे हो रहा था कि ये क्या हो गया, एम्पलीफायर काम नहीं कर रहा, ये हो रहा है, जनरली अक्सर हमारे सब जगह पर होता है। तो थोड़े समय के बाद दादी ने मुझे करेक्ट किया, दादी ने मुझे कहा कि तुम्हारा काम था साइलेंस में रहना और वाइब्रेशन देना, वो एम्पलीफायर वाला अपने आप एम्पलीफायर ठीक कर रहा है ना, तुम्हें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना हमारे मन पर हमारा कंट्रोल हो, ये यदि हम रखेंगे तो अपने आप ही व्यर्थ से परे हो जाएंगे। ओम शांति।
थैंक यू दीदी, छोटी छोटी दादी की शिक्षाएं देने के लिए। और बिंदु बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? और उसके बाद सबको एक एक मिनट चाहिए, एक ही मिनट बिंदु बहन और एक ही मिनट सुरेश भाई।
जब सुरेश भाई ने कहा ना कि दादी ने कहा अब तेरे बिजनेस की कोई जरूरत नहीं, वहां तेरा कोई काम नहीं, तो मुझे वो बात तब याद आ गई। तो बड़े दादी प्रकाश मनी जी, मेरा पहले नाम माया था लौकिक में, दादी ने नाम रखा बिंदु। और फिर जब बंधनों में थे तो दादी ने कहा तुझे जॉब करनी है, पढ़ाई में होशियार थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग क्लियर की, जॉब की 14 साल। फिर 14-15 साल बाद दादी ने कहा जॉब छोड़नी है, जब कहा करनी है तो जॉब कर ली, जब कहा छोड़नी है तो जॉब छोड़ ली। दादी से मैं पूछती थी कब छोड़ूं, कहे मैं बताऊंगी कब छोड़ना है, जब उनका छोड़ा। और मुझे हमेशा दादी बोलते थे बैंक वाली ऐसे निशानी के लिए, क्योंकि जगह में जॉब वाली समर्पित बहने बहुत कम थी, मतलब संपूर्ण समर्पण संपूर्ण पवित्रता, जो बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में कहा ना, समर्पण तन की बात नहीं, मन से अगर आप पूर्ण समर्पण हो जाओ ना तो दादी दीदियां बाबा बहुत मदद करते हैं। ओम शर, एक ही मिनट मिला,
थैंक यू।
मैं जो आपको कह रहा था ब्लेस्ड, तो ये ट्रांसपोर्ट विंग की सेवा भी मुझे तो आशीर्वाद रूप में ही मिली हुई है। आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी, उन्होंने सामने से मुझे कहा कि तुम कर सकते हो, इसलिए लिख करके दो कि मैं विंग की सेवा करने के लिए तैयार हूं, फिर हम आपको सेवा देंगे। लेकिन जो सेवा, मैंने पूछा किस में लिख के दूं, क्या लिख के दूं, बोला जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख के दो। लेकिन जो मैंने लिख करके दिया था वो नहीं मिला, और ट्रांसपोर्ट विंग मुझे आशीर्वाद रूप में मिली। और फिर मैंने क्वेश्चन किया कि मुझे ये क्यों दिया जा रहा है, बोला नहीं आपको यही सेवा करनी है इसलिए आपको ये दिया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट विंग की सेवा का भी मुझे सौभाग्य बाबा की तरफ से वरदान रूप में मिला हुआ है। ओम शांति।
सभी हमारे जो आज सभी ने अपने दिल से अनुभव शेयर किए, एक बार हम सभी तालियों से सभी बड़ी बहनों का भाइयों का थैंक्स करते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी शिक्षाएं संजो कर जा रहे हैं जो आगे हमें भी पुरुषार्थ में सहयोग देंगे। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।